दर्शनीय भगवाय उदारा विलास हशेक्षित वाम सुखाय हृतात्मनो हृत प्रणाम भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमान बिल्कुल प्रयुंते। Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor.
अनुवाद। भगवान के मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी सारी चेतना को खो बैठता है। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिच्छित की उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती
है। A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are three divisions of devotees, first class, second class, and third class.
भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ।
Yes, why don't you just, since everyone here speaks Hindi, just read it and I'll read myself.
कनिष्ठ श्रेणी तक के सभी भक्त मुक्त हो जाते हैं। श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकार देखकर भक्त उसके ध्यान में लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है।
When seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. His Grace Sri Man Gaurasundar Prabhu has today instructed me very specifically to speak on this particular verse.
Sri Man Gaurasundar Prabhu ne mujhe aagya di hai ki main is shlok ke upar pravachan karu,
claiming that he will bestow his auspicious blessings upon me. I will try to please him by offering this class at his lotus.
ये प्रार्थना करते हुए कि वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं ये उनको प्रसन्न करने के लिए ये उनके चरण कमलों में अर्पण करता
हूं। We are reading the instructions of Lord Kapila Dev.
हम भगवान कपिले की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं।
This particular chapter is entitled The Glories of Devotional Service.
इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा।
We find the quality of an advanced devotee.
यहाँ पर भक्ति में आगे बढ़े भक्त के गुण बताए गए।
He is absorbed in the consciousness of Krishna.
वो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं।
Such absorption is the quality that purifies our heart.
इस प्रकार के जो लीन होना है वो हमारे हृदय को शुद्ध बनाता है।
Whatever we do in our devotional life should not simply be done in a ritualistic manner.
भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं उसको सिर्फ एक रीति के रूप में नहीं करना चाहिए।
In every activity, we should very sincerely be struggling to absorb our consciousness in what we are doing.
हम जो भी कार्य करते हैं हमें संघर्ष करना चाहिए कि उसमें हमारी चेतना लीन हो जाए।
Because Krishna manifests himself in the activities of devotional service.
क्योंकि कृष्ण भगवान जो है भक्ति के कार्यों में प्रकट होते हैं।
And to the degree we are able to absorb ourselves in the process, to the same degree Krishna purifies our consciousness.
جتنا زیادہ ہم بھکتی کے کاریوں میں لین ہوتے ہیں اتنا زیادہ کرشنا ہماری چیتنا کو شدھ بناتے ہیں.
When we read about Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, how much they were absorbed in every aspect of devotional service.
جب ہم شری چیتنیہ مہاپربھو اور ان کے سنگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ وہ لین رہتے تھے بھکتی کاریہ کلاپوں میں.
Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, is teaching us how to be a devotee by his actions.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, jo Krishna hai, apne karyon se sikha rahe hain kaise bhakt banna chahiye.
And similarly his associates.
Aur unke sahachar bhi.
So we find when Lord Chaitanya would go to the temple of Jagannath, how he would be absorbed in seeing the deity.
Hum dekhte hain jab Chaitanya Mahaprabhu Jagannath mandir mein jate hain to kaise leen ho jate hain bhagwan ke vigrah ko dekhne
mein. He and his devotees, they just didn't go and bow down and offer some dakshin and leave.
ایسا نہیں کہ ان کے بھکت جاتے ہیں اور پرنام کر کے دکشنا لے کے باہر آ جاتے.
Rather, they were completely absorbed.
بلکہ پورا روپ سے لین ہو جاتے.
As soon as the conch shell would blow in the morning, Chaitanya Mahaprabhu and his associates would immediately get up and go to the temple of Jagannath.
جیسے ہی شنکھ بجتا چیتنیا مہاپربھو ان کے ساتھ ترنت اٹھ کر بھگوان جگنناتھ کا درشن کرنے جاتے.
They understood this is Krishna, Balaram, Subhadra.
وہ یہ سمجھتے تھے کرشن بلرام اور سبھدرا ہیں.
Sometimes they would stand with unblinking eyes and tears rolling down their faces.
Kabhi kabhi wo bhagwan ke roop ko dekhte rehte bina palki ke chapakne ke aur aankhon mein ashru prabah ho raha.
Immersed in the thought.
Unke vicharon mein leen hote.
And how great devotees like Madhavendra Puri, how he worshipped the deity.
Kaise Madhavendra Puri wo kaise vishnu ki aradhana karte.
He was willing to risk his entire life just to bring some chandan to cool the form of the deity.
Aur woh apne jeevan ko bhi jokham dane ke taiyar the bhagwan ke liye chandan le aane ke liye.
There was no question of idol worship.
Aur ye aisa nahi hai ki khali koi patthar ki puja
hai. You do not risk your life and walk 1000 kilometers for a statue.
Aap kahe kisi patthar ke liye 1000 kilometer chal kar nahi jayenge.
He was seeing the Supreme Personality of God.
Wo jo hai swayam bhagwan ko dekh rahe.
He was personally reciprocating with him.
Jo ki unke sath aadan pradan kar rahe the.
So in the neophyte stage we may not have this realization.
Kanishtha avastha mein hamare andar ye sakshatkar nahi hoga.
But as we approach Krishna he reveals himself accordingly.
Jaise hum Krishna ke samne prakat hote hain usi prakar se Krishna hamare samne aate hain.
If we approach Krishna as a person, then he will reveal himself as a person.
Jab hum Krishna ke vyakti ke roop mein prakat karna chahte hain to bhagwan vyakti ke roop mein prakat hote hain.
If we approach him as a piece of stone, he will reveal himself as a piece of stone.
Jab hum Krishna ko patthar ke roop mein jaate hain tab Krishna hamare liye samne patthar ke roop mein hi rehte hain.
When Chaitanya Mahaprabhu was at Ratha Yatra, he and his devotees, how were they looking upon the deity?
Jab Chaitanya Mahaprabhu Ratha Yatra mein the وہ اور ان کے بھکت کیسے وگرہ کا درشن کرتے.
How they were dancing, how they were chanting.
کیسے وہ کیرتن اور نتیہ کرتے.
They were having intimate loving pastimes with the deity.
اور ان کا جو بھگوان کے ساتھ بالکل لیلا اور انترنگ.
Lord Chaitanya wanted to test Jagannath.
چیتنیہ مہاپربھو بھگوان جگنناتھ کی پریکشا لیتے.
So he would go behind the cart.
وہ رتھ کے پیچھے لے جاتے جاموس کو.
Just to see is Jagannath remembering me.
دیکھنے کے لیے کہ بھگوان جگنناتھ میرے کو یاد کر رہے ہیں.
Will he continue on his journey to Gundicha without me?
کیا وہ میرے بنا گنڈیچا مندر تک چلے جائیں گے؟
And جگنناتھ would stop.
اور جگنناتھ بھگوان رک جاتے.
And even though thousands of people were pulling the ropes, they would not move.
ہزاروں لوگ رسی کھینچ رہے ہوتے لیکن رس نہیں چلتا.
They didn't know what to do.
ان کو پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے.
جگنناتھ would not move his cart. The wheels were locked.
بھگوان جگنناتھ جو ہے رس آگے نہیں بڑھتا ہے
کہ پہیے بس پھنس گئے. لگتا چیتانیہ واز دین سیٹسفائڈ. ہی کیم ان فرنٹ آف دا کارٹ اینڈ اسٹارٹڈ ڈانسنگ ان فرنٹ آف جگنناتھ اینڈ دین جگنناتھ بیگن ٹو موو.
چیتانیہ مہاپربھو سنتوشٹ ہوئے, وہ بھگوان جگنناتھ کے سامنے آئے, نرتیہ کرنے لگے اور پھر رتھ چلنے لگا.
لارڈ جگنناتھ آئیز ور لکنگ اپان دا بیوٹیفل گولڈن فارم آف شری چیتانیہ مہاپربھو.
بھگوان جگنناتھ کی سندر آنکھیں جو ہیں چیتانیہ مہاپربھو کے سنہرے روپ کو دیکھ رہے.
ماؤتھ واز ایکسٹیٹکلی اسمائلنگ.
اور وہ بہت سندر روپ سے مسکرا رہے تھے.
ٹو سی دا ڈانسنگ فارم آف لارڈ چیتانیہ.
چیتانیہ مہاپربھو کے نرتیہ کو دیکھ کر.
So when we're before the deity and we're dancing and chanting, we're dancing and chanting for their pleasure.
जब हम विग्रह के सामने आते हैं और कीर्तन और नृत्य कर रहे होते हैं तो उनके आनंद के लिए कर रहे होते हैं.
And by this consciousness we make very rapid advancement.
और इस चेतना से हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं.
It is not that we are trying to show our nice dancing and singing talents to other devotees.
ये नहीं है कि हम दूसरे भक्तों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना सुंदर गाता हूँ कितना सुंदर नृत्य करता हूँ.
But rather we are trying to attract the heart of Krishna by our sincere desire to please him.
बल्कि हम कृष्ण के हृदय को आकर्षित करना चाहते हैं अपनी इच्छा से प्रसन्न करने की इच्छा से.
Worship of the deity in the temple is a very important part of attracting the mind, the conditioned souls.
मंदिर में भगवान की विग्रह की आराधना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है मन को भगवान की तरफ लगाने के लिए.
The pure souls see Krishna directly.
जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सब कृष्ण को सीधे सब जगह देखते हैं.
And the conditioned souls gradually learn the process of how to see Krishna.
बद्ध जीव जो है वो धीरे धीरे सीखते हैं कैसे कृष्ण को देखना है.
Therefore, even the greatest Paramahamsas, like Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and in other sampradayas, Madhvacharya, Ramanujacharya, even Shankaracharya, they all established temples and deities.
इसीलिए जो भी बड़े बड़े परमहंस हैं सनातन गोस्वामी रामानुजाचार्य मध्वाचार्य उन्होंने भी बहुत बड़े मंदिरों की स्थापना की.
Because they were very much eager, the people become attracted to the form of the Lord.
क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे कि लोग भगवान के रूप के प्रति आकर्षित
हों. इन वृंदावन में सनातन गोस्वामी बिल्ट हिज टेम्पल इट वाज द हाईएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल.
जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया तो वो सबसे ऊंचा वह सबसे सुंदर मंदिर था.
एंड श्री रूप गोस्वामी बिल्ट द हाईएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल.
और रूप गोस्वामी ने सबसे ऊंचा सबसे सुंदर मंदिर
बनाया. द आइडिया इज to make such a wonderful facility to get people to take serious who is living within this temple.
ye to uddeshya hai ki log gambhirta se pata chale ki kaun vyakti yahan par nivas kar raha hai.
It took years and years and so much efforts to build Govindaji Mandir.
Govindaji Mandir banane mein kai varsh lage.
And such pure morally high life souls were so deeply philosophical. They were the ones behind it.
और जो बहुत ही दार्शनिक रूप के जो भक्त थे वो उनके लिए जिम्मेदार थे.
So naturally when a person comes to the temple he will think who is this built for?
तो कोई व्यक्ति जब मंदिर में आएगा तो कहने लगेगा किसने बनाया.
We must take very seriously.
हमें गंभीरता से उसको सोचना चाहिए.
From a material standard it's very amazing.
What they say is that what आश्चर्य की बात है.
An example.
एक उदाहरण.
In South Africa.
दक्षिण अफ्रीका में.
Srila Prabhupada's devotees built magnificent.
श्री प्रभुपाद के भक्तों ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया.
They probably spent maybe about 50,000 rupees. To buy the deity.
मूर्ति को खरीद करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए खर्च किए.
And about 10 crores to build a house for the deity.
और घर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए.
So one is thinking, how is this?
तो एक सोचेगा ये कैसे?
By material standards, if you're thinking he's a piece of marble, then it doesn't make sense.
अगर आप मूर्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है तो ज्यादा अर्थ नहीं होता.
But if you understand how the Lord has been invoked to enter into this form of the Lord, then it's Krishna. It's not, we cannot judge by some material standards.
लेकिन अगर आप समझोगे कि ये जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है इसको भौतिक स्तर पर नहीं समझो मानोगे.
And in this world everyone is attracted to something beautiful.
और इस दुनिया में कोई कोई सुंदर चीज से आकर्षित होता है.
And our minds are very much absorbed in what is beautiful.
और हमारा मन कोई भी सुंदर चीज के प्रति बहुत आकर्षित होता है.
Men and women they decorate themselves so elegantly just to attract people's minds.
पुरुष और स्त्री बहुत सुंदर रूप से अपने आप को सजाते हैं दूसरों के मन को आकर्षित करने के लिए.
in the United States of America, which in many ways sets the trends of materialistic society, there is an event called the Academy Awards.
America mein jo ki jagah hai jahan se bahut sare pravritti shuru hote hain, ek Academy Award hota hai,
where they give these trophies of awards. It's considered the highest award for entertainers.
जो कि एक ट्रॉफी दी जाती है, जो कि सबसे ऊंचा जो है इनाम माना जाता है मनोरंजन करने वालों के.
And the whole talk of the entire country is what everyone was wearing on that night.
और पूरी बातचीत यही होती है कि व्यक्ति ने क्या कपड़े पहने थे उस
दिन. It's true. The television, the radio, the newspapers, the magazines, they're all talking about what this actress was wearing and what this actor was wearing.
और न्यूज़पेपर टेलीविजन सब में आता है कि ये जो एक्टर है एक्ट्रेस है क्या वस्त्र धारण किए हुए.
They spend hundreds and thousands of dollars sometimes just on a dress and jewelry.
कई बार हजारों डॉलरों खर्च करते हैं वस्त्रों पर और आभूषण पर.
And most people who watch the show on international television, they don't care who wins the awards. They just want to see what everyone is dressed like.
और अधिकांश लोग ये देख रहे थे, वो ये नहीं थे कौन क्या कौन जीत रहा है, वो ये देख रहे हैं कि इसमें कैसे वस्त्र पहने.
And according to how they are dressed, that sets the fashion for the whole nation.
और कैसे उन्होंने वस्त्र धारण किए, पूरे देश के लिए फैशन तय हो जाता है.
So this is human nature.
ये मानव स्वभाव है.
When I was a young boy, the President of the United States and his wife, whatever they would wear, that would be the fashion of the whole nation.
जब मैं नौजवान था उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट उनके पत्नी जो वस्त्र पहनते वही फैशन हो जाता.
And even in India, when you see these marriages, people dress so crazy.
भारत में भी हम देखते हैं कि विवाह में लोग कितने पागल होते हैं.
So this is the propensity of a conditioned soul to be attracted to a beautiful person who is dressed very nicely.
ये बड़ी चीज की प्रवृत्ति है कि उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना जितने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए.
So Krishna is so merciful. He comes down to the level that we can relate to him.
कृष्ण बहुत दयालु है, वो उस स्तर पर आते हैं जिससे हम भी उनके साथ आदान प्रदान कर सकते.
Therefore in the temple we dress him very very nicely.
इसलिए मंदिर में भगवान को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है.
And when Krishna is worshipped and dressed and decorated so nicely, people are very much attracted.
और जब कृष्ण बहुत सुंदर सजाए जाते हैं तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं.
We absorb our consciousness in the forms of the Lord.
हम भगवान के रूप में अपनी चेतना को लीन कर देते हैं.
And that absorption purifies us.
और उससे हम शुद्ध हो जाते हैं.
It's like Srila Prabhupada, once when he came to New Vrindavan, he looked at Sri Sri Radha Vrindavan Chandra and he had tears in his eyes. He was so much ecstatic to see Radha and Krishna.
Srila Prabhupada New Vrindavan mein aaye tab unhone Radha Vrindavan Chandra ke darshan karne par unki aankhon se aansu behne lage.
What he was seeing is something that we were not seeing.
Wo jo cheez dekh rahe the wo hum nahi dekh pa rahe.
But he told us that Radha and Vrindavan Chandra, they are so merciful.
Wo kehne lage ki Radha aur Vrindavan Chandra bahut dayalu.
They have appeared like the most beautiful American boy and girl, just to attract the hearts of all the Americans.
सारे अमेरिकन लोगों को आकर्षित करने के लिए राधा और कृष्णा एक अमेरिकन युवक और युवती के रूप में प्रकट हुए.
And in Paris, we named the deities Radha Paris Ishwara.
पेरिस में डीटी का नाम रखा राधा पेरिस ईश्वर.
He said, throughout the world, the French ladies of Paris are very famous for being beautiful.
पूरे दुनिया में फ्रेंच की स्त्रियां जो है सुंदर होने के लिए बहुत मशहूर होती
हैं. They are always very much trying to attract the hearts of men from everywhere.
वो सब जगह से पुरुष के मन को आकर्षित करना चाहते हैं.
But Srimati Radharani, she has appeared as the most beautiful French girl.
श्रीमती राधारानी सबसे सुंदर फ्रेंच युवती के रूप में प्रकट हुई.
And she has appeared here in Paris in her most beautiful form just to attract the heart of Krishna.
और यहाँ वो पेरिस पर पेरिस में प्रकट हुए कृष्ण के मन को आकर्षित करने के.
And Krishna has appeared as the most beautiful French boy.
और कृष्ण जो सबसे सुंदर फ्रेंच युवक के रूप में.
And together they will attract all the French people. Therefore, Radha Paras Ishvara. So Srila Prabhupada was very concerned that the deities be worshipped with great, great devotion. And that the standard of the worship be very strict. Because if it is not very strict, then people will think it to be idol worship. Srila Prabhupada explained that the difference between statue and deity worship. He explained there was a big statue of a famous political leader in the streets of Calcutta. And the only worship he was getting all year was the pigeons. They were making their offerings on him every day. Does anyone have any questions? What kind of offerings? And once a year, on the birthday of that person, the municipal brushes that brush the streets, they would give him abhishek by just rubbing all the pigeon stool off him. And then thousands of people would gather around and they would put big garland on him. And then the rest of the year he was given to the worship of the pigeons. So this is idol worship. But if we're actually understanding that God is everywhere, that God is merciful, just to help us to focus and absorb our attention on Him and offer personal services to Him, the Lord can manifest Himself in the form of the Murti. And if it is performed very strictly, with great care and devotion, then when people come, they can understand that these people are actually seeing God here. So this is very important. We want to absorb our own minds and we want to absorb everyone's minds. Also within a community, Krishna is supposed to be the center of all interrelationships. So the deity is natural that everyone lives only for Him. Just like in Bombay, to the degree everyone is living for Radha Gopinath and working together for Radha Gopinath. We are all united and we're all Krishna conscious. That focus is very sacred. Very unifying and very absorbing. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees would visit various temples. How they were absorbed in worshipping and loving the deities. So many of you have the murti in your homes. This is how you should feel. I remember in Udupi, one time they offered a crown to Udupi Krishna. He's about this big. They offered him all diamonds. It cost 2 crores. Hare Krishna. So people were criticizing. that what are they doing? They're putting 2 crores of rupees on this giri head. They could be using this money to be feeding poor people. They could be using it to build hospitals. Why are they wasting it like this? So this was in newspapers. So one of the acharyas of this mat, his name was Palimar Mat Swami. Now he's probably almost 90 years old. He gave a very nice example. He said, when the Prime Minister goes from one place to another, if you take everything into consideration just for his security, they probably spend crores of rupees. All the military, the special planes, the special arrangements, holding up the airports, cancelling flights. Literally, any head of state, president of any country, when they travel, they spend crores of rupees just for his security. And he said, in here as Prime Minister of one little tiny speck of one country, of one planet, within the universe. And there are millions and billions of such universes. And there are all these heads of states spending crores and crores of rupees just to for their safety, no one complains.
और जब इनके लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तब कोई कंप्लेन नहीं करता.
But Krishna, he is the supreme prime minister, not of one country, not of one planet, not of one universe, not of just the material existence, but all creation.
और कृष्ण जो है वो परम भगवान जो है वो न केवल एक देश के बल्कि न केवल ग्रह के बल्कि ब्रह्मांड के न केवल भौतिक बल्कि सब सृष्टि के.
And once in 10 years we buy a crown and everyone is complaining.
और 10 साल में एक बार हमने मुकुट खरीदा आप लोग शिकायत कर रहे हैं.
To be spending hundreds and thousands of crores every day, it's not enough for Krishna.
अगर कृष्ण के लिए हर रोज भी हम करोड़ों रुपए खर्च करें तो भी वो कम
है. We should simply do what we can. And if you water the root of the tree, automatically the tree is satisfied.
हम उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं और अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा.
So this is the consciousness of absorbing ourselves and understanding that Krishna is a person.
ये हमारी चेतना को लीन करने की कृष्ण जो है एक व्यक्ति है.
Krishna has appeared in the murti just to reciprocate with our love.
हमारे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण मूर्ति के रूप में प्रकट हुए.
Therefore, it should not be done ritualistically. It should be done very personally, very strictly, and very lovingly.
तो रीति रिवाज के रूप में नहीं लेकिन प्रेम से और बड़े स्ट्रिक्टली करना चाहिए.
So in your homes, you should have this consciousness.
अगर हम घर में हैं तो ऐसी हमारी चेतना होनी चाहिए.
To the degree you have this consciousness, to that degree, you will become purified.
जितना आपकी ये चेतना है उतना आप शुद्ध हो जाओ.
When you invite Krishna into your home, do not think that it's just a formality.
जब कृष्ण को आपने घर में बुलाते हैं तो ये मत समझो कि सिर्फ औपचारिकता है.
It's a serious commitment.
बहुत गंभीर चीज.
And as you approach the Lord will purify your heart accordingly.
और जैसे आप भगवान के प्रति भावना रखते हो वैसे ही भगवान आपको शुद्ध बनाएंगे.
It is explained here that the worship of the deity is one of the 5 very, very important principles of devotional service.
यहाँ बताया गया कि अष्ट विग्रह की आराधना भक्ति के 5 मुख्य चीजों में से एक है.
Through Rupa Goswami, Lord Chaitanya explained these 5. If we follow them carefully, we will naturally make very, very rapid advancement.
So Rupa Goswami ko Chaitanya Mahaprabhu ne sikhaya, agar hum isko dhyan purvak palan karenge to bahut jaldi pragati kar sakenge.
The first is to chant the holy names of the Lord.
Pehla hai Bhagwan ke naam ka kirtan karna.
Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
This is the Yuga Dharma.
Yuga Dharma.
Ultimately, everything in devotional service is aimed at establishing the proper consciousness by which we can chant His holy names.
अंततः भक्ति हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य है सही चेतना को स्थापित करना जिससे हम नाम जप कीर्तन कर सकें.
Because the name of the Lord is the form of the Lord that we can take with us everywhere and anywhere.
भगवान का नाम रूप जो है वो ऐसा विग्रह है जिसको हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं.
There are no hard and fast rules.
इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं.
Whether you're in the bathroom or whether you're in your bed trying to sleep, any situation, even if you're unclean, you can't worship the deity in those situations. But you can always chant His name.
आप किसी भी जगह पर हो, चाहे बाथरूम में हो या सोने का प्रयास कर रहे हो, अगर आप अशुद्ध हो तो भी आप भगवान का नाम ले सकते हो.
And the Lord's name is invested with all of His potencies.
और भगवान के नाम में उसकी सारी शक्तियां निहित हैं.
The Lord's pastimes, qualities, form, the Lord's mercy is all contained within His name.
भगवान के नाम में सब रूप लीला गुण सब कुछ इसी में.
The holy abode of Vrindavan is within the name of Krishna.
भगवान कृष्ण के नाम में वृंदावन धाम है.
So we should chant very, very sincerely.
हमको बहुत अच्छे दिल से नाम जप करना चाहिए.
What is the meaning of Yuga Dharma?
Yuga Dharma का अर्थ क्या है?
It means in this particular age, it's the only means by which we can attain that most essential principle of pure consciousness.
इसका मतलब यह है कि इस युग में यही तरीका है जिससे कि हम अपनी चेतना को शुद्ध बना सकते हैं.
हरिनाम 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 एव केवलम करो नास्तेव 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 कथ्य रंजित. There's no other way.
और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं.
And because people are so fallen in this age, a process by which anyone and everyone can do without difficulty.
एक तरीका है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना किसी मुश्किल के.
Even a child loves to chant and dance.
एक छोटे बच्चे को भी आनंद होता है कीर्तन और नृत्य में.
And thus their consciousness becomes purified.
और इस तरीके से उनकी चेतना जो है शुद्ध हो जाती है.
And everything we do, it's real. Spiritual perfection is to the degree we are chanting the name as we are doing it.
और कोई भी चीज करते हैं उसकी पूर्णता यह है कि कैसे हम नाम जप कर रहे हैं.
According to our Vaishnav scriptures, any offering is accompanied by the chanting of the holy name.
और वैष्णव शास्त्र के अनुसार कोई भी भोग अर्पण करते हैं उसके साथ भगवान का नाम कीर्तन होता है.
So Lord Chaitanya and his associates, by their example, they taught that japa should be done very strictly. According to regular minimum rounds of Harinam.
Chaitanya Mahaprabhu ne kaise mein sikhaya hai ki naam jab jo hai woh saktai ke sath kiya jana chahiye aur gin kar kiya jana chahiye.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they would chant minimum 2 lakhs every day.
Rupa Goswami, Sanatan Goswami 2 lakh Bhagwan ke naam kam se kam jap karte.
Raghunath Das Goswami also.
Raghunath Das Goswami.
Very strict.
बहुत सख्ताई से पालन करो.
हरिदास ठाकुर ही वुडंट ईट और ड्रिंक अंटिल ही कंप्लीटेड 3 lakhs ऑफ नेम्स एवरी डे.
हरिदास ठाकुर जो है जब तक 3 लाख जब पूरा नहीं करते तब तक कुछ खाते नहीं कुछ पीते नहीं.
एंड श्री चैतन्य महाप्रभु वुड आल्सो वेरी केयरफुली काउंट हिज जापा.
श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ध्यान पूर्वक अपना जप गिनती करते.
जस्ट टू टीच बाय एग्जाम्पल हाउ इम्पोर्टेंट इट इज.
ये सिखाने के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है.
So when we are chanting, there are basically 3 types of chanting. There is japa, bhajan, and kirtan.
When we chant Bhagwan's name, there are 3 types: japa, bhajan, and kirtan.
They are all very important.
These 3 are important.
Sankirtan is the congregational chanting and dancing where we are together chanting very loudly.
Sankirtan का मतलब है जब हम एक साथ होते हैं और बड़े उच्च स्वर में गाते हैं कीर्तन और नृत्य.
This creates social unity.
इससे सामाजिक एकत्व भावना जागृत होती है.
यही जब कोरल एंड हिपोक्रेसी
जो कि कलयुग का युग है जिसमें झगड़ा होता है.
इट आल्सो प्यूरिफाइज द एंटायर वर्ल्ड.
इससे पूरे दुनिया शुद्ध हो जाती है.
बिकॉज द नेम इज रिजाउंडिंग एवरीवेयर.
क्योंकि सब जगह पर नाम गूंज रहा है.
प्यूरिफाइंग ऑल लिविंग बीइंग्स.
सब जीवात्माओं को शुद्ध बना रहा है.
एंड इट इज आल्सो अ वेरी यूनिक एंड एसेंशियल वे ऑफ अब्सॉर्बिंग आवर कॉन्शियसनेस इन द होली नेम.
और ये एक बहुत ही जरूरी तरीका है अपनी चेतना को भगवान के नाम में लीन करने के लिए.
सो दोज हू वांट टू मेक एक्चुअल प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट अब्सॉर्ब देमसेल्व्स इन रेगुलर जापा एंड कीर्तन अमंगस्ट वैष्णव्स.
जो लोग अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहते हैं उनको नियम पूर्वक अपने जपों में और कीर्तन में भी चेतना को लीन करना चाहिए.
इफ वी आर नॉट अब्जॉर्बिंग आवरसेल्व्स इन दीज टू टाइप्स ऑफ चैंटिंग देन वी विल नॉट मेक प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस.
अगर इस तरह से दो प्रकार जप और कीर्तन अपनी चेतना को नहीं लगा रहे तो हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे.
बट एज वी से द की टू ऑल दीज प्रिंसिपल्स इज नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस बट द अब्जॉर्बशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विद इन द प्रोसेस.
ये तो मुख्य चीज और तरीका ही नहीं है बल्कि कितना हम अपनी चेतना को उसमें लगा रहे हैं.
As we are chanting, as we are worshipping the deities, we should be absorbing our consciousness in Krishna.
जितना हम जप कर रहे हैं मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो अपनी चेतना को कृष्ण में लगाना चाहिए.
And this takes effort for a neophyte devotee.
और एक नए भक्त के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है.
For an advanced devotee, automatically you're absorbed.
और जो भक्ति बहुत आगे बढ़े हैं उसके लिए अपने आप उनका मन लीन हो जाए.
मुकुंद सरकार.
सरकार
ही वॉज दी फिजिशियन फॉर द रॉयल किंग.
वो राजा के लिए वैद्य थे.
व्हेन समवन केम टू शेड द किंग विथ ए पीकॉक फैन.
जब कोई व्यक्ति राजा को जो है मोर का पंख लेकर आया.
इमीडिएटली अपॉन सीइंग पीकॉक फैदर ही वॉज सो अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण ही फेल अनकॉन्शियस डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्टेज.
और जब उन्होंने मोर का पंख देखा तो कृष्ण का स्मरण होते हुए तुरंत गिर पड़े स्टेज के नीचे.
दैट इज अब्सॉर्प्शन.
इसको बोलते हैं लीन होना.
इंस्टेंटेनियस एंड स्पॉन्टेनियस.
बिल्कुल आकस्मिक और स्वाभाविक.
व्हेन चैतन्य महाप्रभु वुड सी अ काउ ही वुड फॉल अनकॉन्शियस रिमेंबरेंस ऑफ कृष्ण.
चैतन्य महाप्रभु जब एक गाय को देखते तो कृष्ण का स्मरण होते ही वो बेहोश.
व्हेन ही वुड सी द ओशन ही वुड बी अब्सॉर्ब्ड इन थिंकिंग ऑफ द जमुना.
जब वो समुद्र को देखते तो वो यमुना नदी के विचारों में लीन हो जाते.
When he would see a tamal tree, he would just think of Krishna's color and become completely ecstatic in all transformations would manifest in his body.
जब एक तमाल वृक्ष देखते तो उनको कृष्ण का वर्ण याद आता और सारे प्रेम के लक्षण उन्हें प्रकट हो आते.
Madhavendra Puri, when he would see a dark cloud, he would immediately fall unconscious and then start weeping and crying and trembling, his hair standing on end.
महावेंद्र पुरी जब एक बादल को भी देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आए थे, उनके बाल खड़े हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते.
व्हाट टू स्पीक अब व्हेन दे वुड चैंट द होली नेम्स.
और जब भगवान का नाम लेते तो कहना ही क्या.
सो दिस इज अब्सॉर्प्शन.
इसको बोलते हैं लीन होना.
सो वी आर नॉट ऑन दिस प्योर प्लेटफॉर्म.
हम इस शुद्ध स्तर पर नहीं है.
सो इट इज आवर तपस्या, इट इज आवर ऑस्टेरिटी टू फोर्स अब्सॉर्प्शन इनटू द वर्चुअस एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस.
तो हमारे लिए तपस्या है कि कृष्ण भावना के कार्यों में जबरदस्ती इस तरह से अपने मन को लीन करना.
As we're chanting, कृष्ण is dancing on our tongue.
जब हम जब कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं हमारी जीवा पर.
And if we just become attentive, he dances within our heart.
अगर हम ध्यान देंगे तो वो हृदय में भी नृत्य करेंगे.
But our mind is wandering off to so many other types of songs and so many other thoughts.
लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा है दूसरे गीतों में और दूसरे विचारों में.
हरे कृष्ण वेयर इज आवर अब्सॉर्प्शन.
कहां हमारा मन लीन हो रहा
है. इन दिस मटेरियल वर्ल्ड रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स पीपल आर वेरी अब्सॉर्ब्ड इन द ऑपोजिट सेक्स.
रूप गोस्वामी बताते हैं भौतिक दुनिया में लोग जो पुरुष स्त्री संबंध के विचारों में बहुत लगे रहते हैं.
Manoviram means with the same absorption that a young man is absorbed in a young woman and a young woman is absorbed in a young man, if we just absorb ourselves that much in Krishna, how purified we will become.
जिस तरह से नवयुवक नवयुवती के विचारों में नवयुवती नवयुवक के विचार में रहता है उसी तरीके से अगर हम कृष्ण में मन लगाएंगे तो कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे.
So it is very, very important that we have to force our consciousness as a tapasya to absorb itself in the sound of Krishna's name. In the beautiful form of Krishna's deity.
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तपस्या के रूप में अपने मन को जबरदस्ती भगवान के नाम ध्वनि में और भगवान के विग्रह में लगाना चाहिए.
And to the degree we struggle to absorb ourselves in that sound vibration, to that degree Krishna will manifest a purified state of consciousness.
और जितना हम संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा जो है हमारे कृष्ण प्रकट होंगे, हमारी चेतना को शुद्ध बनाएंगे.
The difference between ritualistic chanting that is mechanical and real chanting that pleases Krishna is our endeavor to absorb our consciousness in the sound of Krishna's names.
जो रीति रिवाज के रूप में जब किया जाता है या सच्चा जब तो उसकी अंतर यह है कि कितना हम प्रयास करें अपने मन को उस ध्वनि में लगाने के लिए.
The second principle is to associate with devotees and serve them as far as possible.
दूसरा सिद्धांत है भक्तों का संग करना और जितना हो सके उनकी सेवा करना.
This should also be a process by which we absorb our consciousness.
ये भी एक तरीका होना चाहिए जिससे कि हम अपनी चेतना को लीन करें.
Preliminary to any other spiritual progress, we must have the association of sincere devotees.
सबसे मूल चीज है कोई भी अध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भक्तों का संग प्राप्त हो.
The association of devotees creates an environment by which we can practice real spiritual life.
भक्तों का संग जो ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकते हैं.
Srila Prabhupada warned us, as did Srila Bhakti Siddhanta Saraswati.
Srila Prabhupada and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati have given us the chetavani.
Anyone who thinks that they can make spiritual advancement without proper association of devotees is insane.
जो व्यक्ति सोचता है कि बिना भक्तों के संग के प्रगति कर सकता हूँ वो पागल है.
We read about great Babaji's, or even someone like Haridas Thakur, who living in a cave in a secluded place is immersed in chanting the holy name.
कहीं कहीं बाबा जी के बारे में सुनते हैं या हरिदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं जो गुफा में रहकर भगवान का नाम जप करते थे.
We cannot imitate them.
हम उनकी नकल नहीं कर सकते.
Maya will certainly steal away our intelligence.
माया हमारी बुद्धि को छीन लेगी.
And even Haridas Thakur, whenever he had the chance, he was in the association of Advaitacharya, Srivas Thakur, Lord Chaitanya Mahaprabhu. He loved the association of devotees.
और हरिदास ठाकुर भी जब भी अवसर मिलता था अद्वैत आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह भक्तों के संग में आने का प्रयास करते.
In the purified state, you cannot give up the association of devotees. It becomes a spontaneous absorption of your love.
जब शुद्ध अवस्था में पहुंचते तो भक्तों का संग त्याग नहीं सकते, वो स्वाभाविक हो जाता है.
But in the neophyte stage, because of our egoistic mind, sometimes we are not able to appreciate the association.
जब हम कनिष्ठ अवस्था में होते हैं तो हमारे अभिमानी मन के कारण कभी हम भक्तों के संग का महत्व नहीं समझ पाते.
But it is essential.
लेकिन ये आवश्यक
है. To absorb ourselves in that association.
उस संघ में अपने आप को लीन करना.
And that comes through service.
और वो जो है सेवा के द्वारा.
The importance of association is so much declared in the holy scriptures.
और जो शास्त्र में बहुत उसकी संगति महिमा बताई गई.
चैतन्य महाप्रभु said, if you want to be pure, you have to associate with devotees and not associate with materialistic people. That's the essence.
चैतन्य महाप्रभु बताया, अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो भक्तों का संग करो, अभक्तों का संग त्याग करो.
जय भारत, he was actually on the preliminary stages of bhava.
जड़ भरत जो है वो करीब करीब भाव अवस्था तक पहुंचते थे.
He was living Gandaki. I mean, banks of Gandaki River.
वो गंडकी नदी के
हिमालयस
तट पर रहते थे, हिमालय में.
All alone.
अकेले.
When he was thinking of Krishna, his eyes were swelled with tears, his hair stood on end and he would tremble.
जब वो कृष्ण के बारे में सोचते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, शरीर कांपने लग जाता और बाल खड़े हो जाते.
In such an advanced state, when he saw that little baby deer helpless, he became so much attached to helping that deer.
और इस अवस्था में भी जब उन्होंने छोटे हिरण को देखा तो बिल्कुल आसक्त हो गए उसको मदद करने के लिए.
To serve that deer, he gave up all of his sadhana.
और हिरण की सेवा करने के लिए सब साधना त्याग कर दिया उन्होंने.
Now you may think that it was out of compassion.
आप सोचेंगे ये तो कृपा की भावना से.
But factually, the deer would have died if he didn't take care of it.
अगर उसका ख्याल नहीं रखते तो हिरण की मृत्यु हो जाती.
But that's the way Maya works.
इसी तरीके से माया कार्य करती है.
She puts us in a situation that we succumb to her influence.
और ऐसी स्थिति रखती है कि हम उसके प्रलोभन में गिर पड़ते हैं.
Now if Bharat Maharaj was living in a brahmachari ashram.
अगर भरत महाराज ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे होते.
Or if he was living in a congregation of devotees he was associating with.
अगर वो भक्तों के संग में रहते थे सामूहिक रूप से.
They would have said, Bharat Prabhu, don't be so attached to this deer. Check your rounds.
लोग बोलते तो भरत प्रभु हिरण की मिली आसक्ति में तो ठीक से जप करो.
And due to the social pressure, he would have definitely started chanting his rounds.
और सब लोग के बोलने के प्रेशर के कारण वो से जप करना शुरू कर दे.
People would have seen him. I don't see any of your counting beads moving.
मैं देख रहा हूँ आपके मोती नीचे नहीं आ रहे.
I don't even see you in Mangal Arati. You're so completely absorbed in this deer. This is Maya. We'll help you take care of the deer. You come and chant. We dance with us. Definitely. He would have said, oh, yes, yes, you are correct. So even if you are on such an elevated platform, Maya will trick you if you don't have the association of devotees to
play.
But what is very important is how to associate with devotees. Vrindavan Ananda Prabhu told me to speak on this subject today. And it is appearing of its own accord. Association of devotees means in a mood of service. Every other devotee is Prabhu and I am Das Das Anu Das. If we are not in that consciousness, no, we're not really associating with devotees. Everyone is servant, no one is master. The various positions we may take in the Varnashram system is all just a particular way to serve.